एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
सहर दिल खून का प्यार से दिल का ना कोई सहर दिल खून का प्यार से दिल का ना कोई वास्ता। डर के साए लहराए बन गई ये जिंदगी यहाँ एक जंग हे यीशु अब तो है तेरा
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोतागण, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं और उससे सीखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हमारे मनों को खोल दे, विशेषकर मेरे श्रोतागणों के संग हो, उन्हें तो बहुत आज से आशीष दे तेरे वचनों के द्वारा, और मेरे संग हो पिता तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचनों को सही सलामत बतलाने सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का हमारा अध्ययन का शीर्षक है उत्तर पाने वाली प्रार्थना का रहस्य। आइए हम इसे सीखेंगे। एक रूसी लेखक और इतिहासकार अनातोली लेविटिन ने साइबेरियाई गुलाग में वर्षों बिताए, जहां परमेश्वर को की गई याचिकाएं जमीन पर जमी हुई लगती थी, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से काफी सही होकर वापिस आए। उन्होंने लिखा, इस सब का सबसे बड़ा चमत्कार प्रार्थना है। मुझे केवल मानसिक रूप से परमेश्वर के पास जाना है और उसी समय मेरे पूरे अस्तित्व में एक बल महसूस होता है जो मेरी आत्मा में कहीं से डाल दिया जाता है। यह क्या है? मैं एक तुच्छ बूढ़ा और जीवन से थका हुआ इंसान, क्या यह शक्ति मुझ में नवजीवन का संचार करेगी और मुझे बचाएगी, मुझे पृथ्वी से ऊपर उठाएगी? यह मुझ में बाहर से आती है और दुनिया में कोई बल नहीं है जो कभी इसका विरोध कर सकता है। परमेश्वर के साथ बातचीत। हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें सुनता है? यिर्मयाह 29 का 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, तुम मुझे खोजोगे और मुझे पाओगे जब तुम मुझे अपने पूरे दिल से खोजोगे। यीशु ने क्या आश्वासन दिया कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और जवाब देंगे? आइए हम देखेंगे लूका 11 का 9 में। यहाँ लिखता है, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो दरवाजा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रार्थना तो दो तरफा वार्तालाप है। यीशु ने यही वादा किया है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम पढ़ते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तसल्ली से बैठना और भोजन पर मसीह के साथ उत्कृष्ट वार्तालाप कर पाना कैसे संभव है? सबसे पहले हमारे दिल में जो कुछ भी है उसे प्रार्थना के द्वारा बताकर, दूसरा ध्यान से सुनकर। जैसे जैसे हम प्रार्थना में ध्यान करते हैं, परमेश्वर सीधे हमसे बात कर सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं, परमेश्वर उसके प्रश्नों के माध्यम से हमसे बात करेंगे। प्रार्थना मसीहों के लिए जीवन का एक तरीका बन सकती है। आइए हम देखते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5:16-18। लगातार प्रार्थना करें, सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दें, क्योंकि यह यीशु मसीह में आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। यही यहाँ पर कहती है। हम लगातार प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? क्या हमें हर समय अपने घुटनों पर रहना पड़ेगा या लगातार आराधना या याचिका के वाक्यांश दोहराते होते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम यीशु के साथ इतने करीबी संबंध रखें कि हम कभी भी कहीं भी उनसे बात करने में संकोच ना करें। भजन संहिता 104:34 कहती है, मेरा ध्यान करना उसे उतना प्रिय लगे जैसा कि मैं यहोवा के कारण आनंदित हूँ। प्रार्थना करते समय अनुरोधों की एक सूची ना रखें, रुकें, सुनें। थोड़ा प्रार्थनात्मक चिंतन परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को बहुत समृद्ध कर सकता है। याकूब 4:8 कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आइए हम आगे देखते हैं प्रार्थना कैसे करें। जब हम प्रार्थना में संलग्न होते हैं तो हम प्रभु की प्रार्थना की रूपरेखा का पालन करना चाह सकते हैं। वह आदर्श प्रार्थना जो यीशु ने अपने शिष्यों को उनके अनुरोधों के जवाब में सिखाई, हमें प्रार्थना करने सिखाएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। यीशु के अपनी प्रार्थना में दिए गए तरीके के मुताबिक हमें परमेश्वर के पास अपने स्वर्ग में रहने वाले पिता के रूप में आना है। मांगे कि वह हमारे दिलों में वैसे ही राज करें जैसे उसकी इच्छा पूरे स्वर्ग में पूरी होती है। हम उन्हें अपनी शारीरिक जरूरतों, माफी के लिए और क्षमाशील दृष्टिकोण के लिए खोजते हैं। याद रखें कि पाप का विरोध करने कि हमारी क्षमता परमेश्वर से आती है। मसीह की प्रार्थना प्रशंसा के भाव के साथ समाप्त होती है। एक और मौके पर यीशु ने अपने शिष्यों को मेरे नाम पर पिता से प्रार्थना करने का निर्देश दिया, जिसे हम यूहन्ना 16 का 23 में पाते हैं। यह यीशु के सिद्धांतों के अनुरूप प्रार्थना करने के लिए है। यही कारण है कि मसीह आमतौर पर इन शब्दों के साथ अपनी प्रार्थना खत्म करते हैं, यीशु के नाम में आमीन। आमीन एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा ही हो। हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 5:7 में, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे उद्धारकर्ता हमारे जीवन के हर विवरण में रुचि रखते हैं। जब हमारा दिल प्यार और विश्वास में उनके पास पहुंच जाता है तो उनका दिल खुश हो जाता है। आइए हम निजी प्रार्थना क्या है उसके विषय में पढ़ें। हम में से अधिकांश लोगों के पास ऐसी बातें होती है जो हम अपने करीबी दोस्तों के साथ भी साझा करने में संकोच करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें निजी प्रार्थना में खुद को हल्का करने के लिए आमंत्रित करते हैं, सिर्फ उनके साथ अकेले। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी भी जानकारी की जरूरत है। सर्वशक्तिमान हमारे गुप्त भय, छुपे हुए उद्देश्यों और दफन किए गए असंतोष को हमसे भी बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन हमें अपने दिल को उनके सामने खोलने की जरूरत है, जो हमें गहराई से जानते हैं और हमें असीम रूप से प्यार करते हैं। उपचार तब शुरू हो जाता है जब यीशु हमारे घावों को छू सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे महायाजक यीशु हमारी सहायता करने के लिए करीब हैं। हमारे पास एक है जिसे हमारी ही तरह हर तरह का प्रलोभन दिया गया, तब भी वह निष्पाप बना रहा। आइए हम आत्मविश्वास के साथ कृपा के सिंहासन से संपर्क करें, ताकि हम अपनी आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करने के लिए दया प्राप्त कर सकें और कृपा पा सकें। यह प्रतिज्ञा हमें इफिसियों 4:15-16 में मिलता है। क्या आप चिंतित, तनावग्रस्त, दोषी महसूस करते हैं? परमेश्वर के सामने इसे बाहर निकालिए, फिर वह हमारी हर जरूरत की आपूर्ति कर सकते हैं। क्या हमारे पास निजी प्रार्थना के लिए एक विशेष जगह होनी चाहिए? आइए हम मत्ती 6:6 में पढ़ें। जब आपको प्रार्थना करनी हो, अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से प्रार्थना करें, जो आपको इनाम देंगे। सड़क पर चलते वक्त, नौकरी के समय या सामाजिक सभा का आनंद लेने के दौरान प्रार्थना करने के अलावा प्रत्येक मसीह को व्यक्तिगत प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के लिए प्रत्येक दिन एक समय निर्धारित करना चाहिए। परमेश्वर के साथ अपनी दैनिक मुलाकात उस समय निश्चित करें जब आप अधिक सतर्क महसूस करते हों और सर्वोत्तम ध्यान केंद्रित कर सकते हों। आइए हम सार्वजनिक प्रार्थना के विषय में सीखें। प्रार्थनाओं में दूसरों के साथ जुड़ना एक विशेष बंधन बनाता है और एक विशेष तरीके से परमेश्वर की शक्ति को आमंत्रित करता है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 18:20 में, यहाँ लिखा है, जहाँ मेरे नाम पर 2 या 3 एक साथ आते हैं, वहाँ मैं उनके साथ हूँ। यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। सबसे बड़ी बात जो हम एक परिवार के रूप में विकसित कर सकते हैं वो प्रार्थना है। जवाब पाने वाली प्रार्थना के सात्य रहस्य हम आगे देखेंगे। जब मूसा ने प्रार्थना की, लाल सागर अलग 2 भाग हो गया। जब एलिया ने प्रार्थना की तो स्वर्ग से आग नीचे आई। जब दानियल ने प्रार्थना की तो एक स्वर्गदूत ने क्रूर शेरों का मुंह बंद कर दिया। बाइबल में ऐसे कई विवरण दिए गए हैं जिनमें प्रार्थना का जवाब मिला। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, यह यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है जो हम पाते हैं यूहन्ना 14:14 में। फिर भी कुछ प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। क्यों? यहाँ 7 सिद्धांत हैं जो आपको अधिक प्रभावी ढंग से प्रार्थना करने में मदद करेंगे। आइए हम इसे देखते हैं। पहला, मसीह के करीब रहें। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो कुछ भी तुम चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। या यीशु मसीह का प्रतिज्ञा हम पाते हैं यूहन्ना 15:7 में। दूसरा, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 21:22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और मरकुस 9:24 में हम पढ़ते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यह एक व्यक्ति जो बीमार था वह प्रार्थना कर रहा था और यीशु मसीह ने उसे मदद किया, उसे चंगा दिया और उसका विश्वास को मजबूत किया। केवल अपने विश्वास पर ध्यान केंद्रित करें, जो आप करते हैं उस विश्वास के बारे में चिंता ना करें जो आपके पास नहीं है। तीसरा, हम देखते हैं शांतिपूर्वक परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण करें। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। 1 यूहन्ना 5:14। याद रखें कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, साथ ही प्रार्थना के माध्यम से हमें चीज़ें भी देना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी वह कहते हैं नहीं, कभी कभी वह हमें दूसरी दिशा में भेज देता है। पवित्र आत्मा आपको सही निशान पर पूरी मदद करेगी। वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, 8:27। याद रखें कि अगर हम देख सके तो हमारी इच्छा हमेशा परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाती है। चौथा, परमेश्वर की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। मैं परमेश्वर की धीरज से प्रतीक्षा कर रहा था, उन्होंने मेरी ओर मुड़कर मेरी दुहाई सुनी। यह प्रतिज्ञा हम भजन संहिता 40:1 में पढ़ते हैं। पांचवा, कोई भी पाप करते ना रहें। भजन संहिता 66:18 कहती है, अगर मैंने अपने दिल में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनते। और याकूब 4:3 इस तरह कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरा इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। और यदि हम पढ़े नीति वचन 28:9 तो वहाँ लिखा है, अगर कोई अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है तो उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। तो हमें पाप करते रहने से बचना है, पाप को दूर करना है हमारे जीवन से। छठा, परमेश्वर की आवश्यकता को महसूस करिए। परमेश्वर उन लोगों को जवाब देते हैं जो अपने जीवन में उनकी उपस्थिति और शक्ति मांगते हैं। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यह हमें मिलता है मत्ती 5:6 में। सातवां, प्रार्थना में लगे रहें। यीशु ने एक आग्रही विधवा की कहानी बताकर हमारी याचिकाओं में लगातार बने रहने की आवश्यकता को सचित किया, जो अपने अनुरोध के साथ एक न्यायाधीश के पास लगातार आती थी। अंत में न्यायाधीश ने सीझ कर कहा, क्योंकि यह विधवा मुझे परेशान करती है, मैं देखता हूँ कि उसे न्याय मिले। फिर यीशु ने निष्कर्ष निकाला, क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय नहीं करेंगे जो दिन रात उनके सामने रोते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेंगे? लूका 18:5-7। परमेश्वर के साथ अपनी सभी जरूरतों, उम्मीदों और सपनों की चर्चा करें। जरूरत के समय में मदद के लिए विशेष आशीर्वाद मांगे। तब तक मांगते रहें और सुनते रहें जब तक आप परमेश्वर की प्रतिक्रिया से कुछ नहीं सीखते। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए स्वर्गदूतों की सेवकाई है। बाइबल में हम पाते हैं प्रतिज्ञा 1:14 में, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए स्वर्गदूत भेजते हैं। प्रत्येक मसीही के साथ एक अभिभावक स्वर्गदूत हैं, जिसे हम पढ़ते हैं मत्ती 18:10 में। यह प्रतिज्ञा, देखें कि आप इन छोटों में से किसी एक को भी नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत हमेशा स्वर्ग में मेरे पिता का चेहरा देखते हैं। मती 18:10 हम पढ़ें, मसीही जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। बाइबल एक अलग मसीही जीवन शैली का वर्णन करती है। इसे हम इफिसियों 4:22-24 में पढ़ सकते हैं। उसके मुताबिक मसीह जीवन का अर्थ पुरानी जीवन शैली को छोड़ना है जो धोखेबाज इच्छाओं के परिणाम स्वरूप हैं, और नई जीवन शैली अपनाना है जो परमेश्वर की तरह बनने के लिए बनाई गई है। आइए तो आज हम यीशु पर अपनी आंखें लगाएं और आप उस अंतिम जीत समारोह का हिस्सा बन सकते हैं जब मसीह की शांति का एक छत्र राज्य होगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें बनाया है, तू हमारा परमेश्वर है और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से पाप को अलग कर दे ताकि हम तुझसे घनिष्ठ संबंध बनाए रखें और तुझसे बातें करते रहें, और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसे उत्तर देगा। मेरे हरेक श्रोतागणों को आशीष दे और हमें नज़दीक ला। मैं तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे पिता, हमारे पापों को क्षमा कर और तेरे रास्ता में चला। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुना ग्रहण कर, आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, Post Box 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।